نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اسلام اے ٹو زی. اس میں الحمد للہ ہم لوگ معاملات کے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اور معاملات میں سے بھی ہم نے آداب کو کافی حد تک سمجھ لیا ہے. اب یہ نہیں پتہ کہ ہمارے اندر یہ آداب کب آئیں گے, لیکن ہمارے کانوں نے ان چیزوں کو سن لیا ہے. اور حقیقت ہے کہ دین ایک کمپلیٹ پیکیج ہے. آپ کو فیل ہو رہا ہے یہ باتیں سنتے ہوئے؟ کتنا یہ جملہ ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. تو ضابطہ کیا ہے؟ ضبط میں رکھنے والی چیز. اور ضبط سب کو ہی پتہ ہے, ہنسی ضبط کرنا, غصہ ضبط کرنا, کنٹرول کرنا. اور حیات کیا؟ زندگی. یعنی اسلام آپ کی میری زندگی کے ہر پہلو کو کنٹرول کرتا ہے. آپ کو مجھے چھوڑا نہیں اللہ نے کسی ایسی چیز میں کہ جس میں اب ہمیں نہ پتہ اور اب کس سے پوچھے, یہ کیفیت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھانے والا بنائے. اب ہم نے کچھ آداب کرنے ہیں خوشی اور غم کے, کیونکہ زندگی کے اندر دکھ سکھ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. سفر بھی دیکھ لیا اور دوستیاں بھی کر لیں, تحائف بھی لے دے دیے, لیکن کبھی زندگی میں آپ کے ساتھ یا کسی آپ کے ساتھ رہنے والے کے ساتھ کوئی غم کا موقع آ جائے, کوئی پریشانی, کوئی مصیبت آئے, تو کیا کریں؟ بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں سنی اور دیکھی جاتی ہے. بہت سارے کام ہم وہ کرتے ہیں جو دیکھا دیکھی کے ہیں, رسمن کہہ لیجئے, لیکن آئیے ذرا قرآن اور سنت سے بھی تو پوچھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی غم کا معاملہ آئے یا آپ کے اوپر کوئی غم آ جائے, کوئی دکھ تکلیف آئے, تو اس میں کیا کریں؟ آپ کہیں گے یہ کوئی پڑھنے والی چیز ہے, بتانے والی چیز ہے, سب کو پتہ ہے, خوب روتے ہیں, خوب پیٹتے ہیں اور منہ سے غلط غلط باتیں نکالتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیے کہ غم اور خوشی دو امتحان کے پرچے ہیں. ایک کا اینڈ صبر ہے تو ایک کا شکر ہے. شکر آئے گا تو صبر بھی ضرور آئے گا, صبر آئے گا تو شکر آئے گا. صبر شکر میں ڈھلتا ہے اور شکر صبر میں ڈھلتا ہے. جو دکھ میں صابر ہوگا وہ خوشی میں شاکر ضرور ہوگا. تو جب بھی کوئی تکلیف آئے, پہلی بات یاد رکھیے کہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ نہ آئے. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے مصائب حمزہ کا ذکر کر کے بتا دیا کہ تکلیفیں تو آئیں گی, دکھ تو آئیں گے, آزمائشیں تو آئیں گی. کبھی کوئی فوت ہو جاتا ہے, کبھی بیماری آ جاتی ہے, کبھی مال چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, حدیث نوٹ کیجئے گا, بخاری 1283, مصائب پر صبر کرنا چاہیے. کس طرح سے؟ مصیبت کیسی ہوتی ہے؟ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کرنا ہے. اور صبر کیا ہے؟ دل کو ناراضگی سے, زبان کو شکوے سے, اور اعضاء کو ہر اس کام سے بچانا جس سے اللہ ناراض ہو. لکھ لیا, بول دیتی ہوں دوبارہ. صبر کیا ہے؟ کہ انسان دل کو ناراضگی سے, کئی لوگ تو دل سے روٹ جاتے ہیں اللہ سے, میں نہیں بولتی آپ سے تو نہ بولیے, اللہ کا کیا جائے گا. کبھی بھی کسی تکلیف کے موقع پہ اللہ سے ناراض نہ ہوں. یاد رکھیے کہ آپ اپنی اس تکلیف کو بڑھا لیں گے, اور اگر تکلیف دور ہو گئی لیکن اللہ ناراض ہو گیا تو پھر بھی کسی کام کے نہیں رہیں گے. ہر موقع پہ اللہ سے راضی رہیں. یہ اس نے ہمیں جینے کا حق دیا, کیا یہ تھوڑا؟ اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو دے رہا ہے یہ تو بونس ہے. ہم بیماریوں, دکھوں, تکلیفوں کے ساتھ بھی جیتے رہتے پھر بھی ہم اس کو ڈیزرو نہیں تھے کرتے. تو دل کو ناراضگی سے اور زبان کو شکوے سے بچانا. کبھی مت کہیے میرے ہی ساتھ کیوں ہوگا, یہ اللہ نے میرے ہی نصیب میں ہر تکلیف کیوں لکھی ہے. اور اعضاء کو ہر اس کام سے بچانا جس سے اللہ ناراض ہو. مثلاً گال پیٹنا, گریبان پھاڑنا, بال نوچنا, سینہ پیٹنا, نوحہ کرنا, یہ کچھ نہیں کرنا چاہیے. اور مصیبت کی خبر سنتے ہی صبر کرنا چاہیے. بخاری 1283 اور مسلم 2139. انما الصبر عند صدمۃ الاولی. بعض دفعہ لوگ شروع میں تو بہت ہی عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں, پھر جب ہمت بھی ختم ہو جاتی ہے اور تھک ہار چکے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا اب میں صبر کرتا ہوں. تو صبر یہ نہیں ہوتا. صبر کیا ہے؟ اچانک کچھ بھی ہو جائے آپ ریئیکشنری نہ ہوں, اپنی جگہ پہ بیٹھے. اور صبر کے موضوع پہ اتنا کچھ بات ہو چکی ہے پہلے بھی, اور ایک جگہ تو میں نے سارے دین کے جو ریچولز ہیں نا وہ سارے جمع کر کے بتائے تھے کہ یہ سب صبر ہے. ایک اللہ کو مان سکتے ہیں جب تک صبر نہ ہو؟ अपने माल में से 2.5% दे सकते हैं किसी को अगर सब्र ना हो, सिला रहमी कर सकते हैं अगर सब्र ना हो, रोज़ा रख सकते हैं अगर सब्र ना हो, दिन में 5 बार अपनी मसरूफियात छोड़ के नमाज के लिए खड़े हो सकते हैं अगर सब्र ना हो। पूरा दीन सब्र है। डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है ना, जिस मुल्क में भी जाएं ले जाएं वहाँ से उसको चेंज कर ले। सऊदीया में जाते हैं सब डॉलर लेके जाते हैं, वहाँ से अपनी अपनी करेंसीज चेंज करते हैं। सब्र भी एक करेंसी है। वक्त पड़ने पे शुक्र में और कनात में और बाकी चीज़ों पे चली जाती है। तो लिहाजा गम और मुसीबत का अदब क्या है कि जब आए तो कहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है आ गई, अब इसको समझने का और इसमें से खैर का रास्ता तू निकाल दे। जो मर्ज़ी कर लीजिए, अल्लाह की लिखी हुई तकदीर को आप और मैं बदल नहीं सकते। और अहसन सब्र क्या है? जिसका मुत्तकियों से वादा है, मुत्तकीन का सब्र। वो कौन सा होता है? इख्तियार है फिर भी आप सब्र करते हैं। बेसब्रे हो सकते थे, कुछ चीज़ें तो मजबूर कुल हैं, पहाड़ों को खड़ा ही रहना है, उनको सब्र करना पड़ेगा, लेकिन आप में अपनी खुशी से अगर सब्र करते हैं तो इसमें हमारी चॉइस है। करें क्या? मुसीबत पर सब्र अल्लाह की रज़ा के लिए करें, ये दूसरी बात है। अल्लाह के लिए करेंगे ना तो फिर ही अजर मिलेगा। सूरत लुकमान 17:17 और बुखारी 5:653 और रात 22। फिर इसी तरह तीसरी बात है कि मुसीबत में अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए और दुआ करें। क्या? सूरत बकरा 156 किसी को याद है? कालू इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजीऊन। यकीनन हम अल्लाह के हैं और उसी के तरफ लौटने वाले हैं। मुस्लिम में एक दुआ है, आप सभी को आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो याद कर लेंगे इंशाल्लाह। बहुत छोटी सी दुआ है, उम्मे सलमा की नस्बत से हम तक पहुँचती है। अबू सलमा उनके शौहर सहाबी रसूल थे, अल्लाह के नबी से जो सीखते थे वो आकर घर में बताते थे। एक दिन आए तो कहा, उम्मे सलमा, अल्लाह के नबी ने आज एक दुआ सिखाई है कि किसी मोमिन को दुनिया में कोई तकलीफ़ आ जाए, कोई भी सदमा, तो वो ये दुआ पढ़े तो अल्लाह के दो वादे हैं। नंबर एक, दुनिया में उसे बेहतर देगा और आखरत में उसका अजर भी देगा। और वो दुआ क्या है आप मेरे साथ दोहराइएगा? अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वख्लिफली खैरम मिन्हा। ए अल्लाह, मुझे मेरी इस मुसीबत में अजर दे और मेरे लिए इसका नेमुल बदल अता फरमा। देखिए अल्लाह की करनी, वही शौहर जो सिखा रहे हैं, कुछ दिन के बाद या कुछ अरसे ही में अबू सलमा का इंतकाल होता है और उम्मे सलमा इद्दत के दिनों में यही दुआ पढ़ती हैं। इन्ना लिल्लाह के साथ मिला लें तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अख्लफली खैरम मिन्हा। जब ये दुआ पढ़ी, शौहर फौत हो गया, दिल में क्या सोचती हैं कि वादे तो अल्लाह के सच्चे हैं, आखरत का अजर भी है। ये दुनिया में अबू सलमा से बड़ा अच्छा सा शख्स मुझे कौन मिलेगा? उस दौर में औरतें ये नहीं सोचती थी कि शौहर चला गया तो अब हमेशा के लिए हम शौहर के बाद बेवगी की ज़िंदगी गुजारेंगे और हमारी कोई खुशी नहीं है। ऐसे नहीं थे मामले उस दौर में। बहरहाल पढ़ती रहीं और इद्दत ख़त्म होने के बाद ख़ुद नबी सल्लम ने घर आकर दस्तक दी और आपको पैगाम दिया, उम्मे सलमा, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं आपको निकाह का पैगाम दूँ। तो फिर वो उम्महातुल मोमिनीन में शामिल हो गई। पूरी यकीन से पढ़ा करें। मैं कहती हूँ मुसीबतें तो रहमतें हैं। अगर आपको मुझे उनको टैकल करना आता हो, अगर हम उसको अच्छी तरीके से देख सकें, तो लिहाजा ऐसी दुआएं याद होनी चाहिए। अब ये जब मुसीबत आएगी तब याद करने का वक्त तो नहीं होगा ना, किताबों में तो नहीं ढूंढेंगे। ये तो दिन में 10 दफ़ा आप पढ़ सकते हैं। बच्चा रो रहा है, क्या करूँ, अल्लाह माजुरनी फी मुसीबती, अल्लाह उस बच्चे को ठीक कर देगा इंशाल्लाह। माल है, खराबी हुई, किसी भी रंग में कुछ भी नुकसान हुआ तो आप इंशाल्लाह इस दुआ को आजमा सकते हैं। चौथा अदब क्या है दुख सुख का, मुसीबत का, कि मखलूक से शिकवे ना कीजिए। सबसे बुरा शिकवा वो है जो मखलूक के सामने अपने खालिक के बारे में किया जाए। क्या ये अल्लाह की शिकायत लगाने के बराबर नहीं लगता? सोचिए, वो जो सबसे रहम करने वाला, जो माँ से प्यार ज़्यादा करता, जिसने पैदा किया, सब कुछ किया। अरब शायर है, कहता है, जब तुम पर कोई मुसीबत आए तो उस पर सब्र करो जैसे कोई करीम शख्स सब्र करता है। फिर यकीनन ज़्यादा एहतियात पसंदी है, और तुम मखलूक से शिकवे करो तो यकीनन तुम रहीम का शिकवा करते हो, उनसे करते हो जो रहम नहीं करता। तो क्या पता चला, अल्लाह की शिकायतें ना लगाएं। क्या कहें फिर? इन नमाशकु बसी व हुज़नी इलल्लाह। सूरत यूसुफ है, रेफरेंस खुद जाके ढूंढिए कि मैं अपने गम और फरियाद जो है अल्लाह के सामने करता हूँ। पांचवा अदब क्या है कि हर उस चीज़ से अवॉइड कीजिए, इज्तनाब कीजिए जिससे अल्लाह नाराज़ होता है। बुराई का ज़ुबान से इजहार भी है और अमली काम भी। ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिसुई इल्ला मन जुलिम, सूरत मायदा छठे पारे की पहली आयत, वो नोट कर लीजिए। यानी ज़ुबान से इजहार नहीं करना, हालांकि इजाज़त मौजूद है, और अमली इजहार क्या है? गिरेबान फाड़ना, थप्पड़ मारना मुंह पे, नोखा सीना पीटना, बददुआएं करना, तबाही और बर्बादी की बातें करना। याद रखिए, ये सब काम अल्लाह को नाराज़ करने वाले हैं और सब्र के मुनाफी हैं। और अगर इसको समझना है तो अपने और अपने बच्चे के मामले को देखें। आप अपने बच्चे को किसी बात पे ज़रा सा डांटें या कुछ हो, तो आगे से वो ये कुछ करे तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। छठा अदब बहुत ही खूबसूरत है। मुसीबत, दुख, तकलीफ, गम आ जाए तो मौत को याद कर लीजिए। मुसीबत हल्की लगेगी। जब इंसान मौत की हकीकत समझता है ना, तो उसको समझ आता है ये तो आनी ही आनी है। सूरत मायदा 106 में तो अल्लाह ने मौत को भी मुसीबत कहा है, मुसीबतुल मौत। हाँ, तो क्या करें कि एक तो बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, ये तो उसके मुकाबले में बहुत छोटी है। सातवां अदब क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात को याद कर लीजिए, मुसीबत हल्की हो जाती है। क्यों? अल्लाह के नबी की वफ़ात से आसमान से वही का सिलसिला बंद हो गया। इससे बड़ी कोई मुसीबत उम्मत मुस्लिमा पे आ सकती थी? दुनिया की हर मुसीबत नबी के दुनिया से जाने से बड़ी थी। और आपको पता है कि जब अल्लाह के नबी पे ये वक्त आया तो एक औरत रो रही थी, तो लोगों ने कहा सब्र करो, अल्लाह के नबी अपने हिस्से का काम कर गए। कहा इस पे नहीं रो रही, इस पे रो रही हूँ कि अब जिब्राइल नहीं आएंगे, क्योंकि वो आते थे और मसले जो भी होते थे वक्त के साथ साथ वो उनका जवाब मिल जाता था। तो याद रखिए कि इस तरह देखे। आठवां अदब क्या है? कि तकदीर के पहले से लिखे जाने पर यकीन कीजिए। जब इंसान ये यकीन करता है कि हर चीज़ अल्लाह की तकदीर के मुताबिक हो रही है, हो के रहेगी, मैं भाग नहीं सकती, अल्लाह के हर फैसले में हिकमत है, तो फिर मुसीबत बर्दाश्त करनी आसान होगी। और बेहतरीन आयात है इसके रेफरेंस में सूरत हदीद 22:23, वमा असाबकुम। और आप देखेंगे कि इससे इंशाल्लाह सब्र भी बहुत आएगा और शुक्र भी आएगा। फिर नवा अदब क्या है? कि मुसीबत में नेमतों का मुशाहिदा कीजिए और इस मुसीबत को भी अल्लाह की तरफ से एक नेमत समझिए। ये गौर व फिक्र करना चाहिए। क्या? नंबर एक, ये मुसीबत इससे कहीं बड़ी हो सकती थी। मसलन अगर आपका $100 का नोट गुम गया, हाँ, तो 1,000 भी तो गुम सकता था ना, ऐसे ही है ना। किसी का एक बच्चा फौत हो गया तो उसके सारे बच्चे भी तो फौत हो सकते थे ना। किसी को बुखार हो गया तो कमर में दर्द भी तो हो सकता था ना। कमर में दर्द हो गया तो दिल का दर्द भी तो हो सकता था ना, और दिल का दर्द हो गया कैंसर भी तो हो सकता था ना। तो उससे बड़े को सोच लीजिए। गौर व फिक्र के नतीजे में जो आपको दूसरी चीज़ दिखेगी वो क्या है? कि मुसीबत दुनिया के मामले में आई है, दीन के मामले में नहीं आई। कोई बात नहीं, दुनिया की मुसीबतों का कुछ ना कुछ बदला मिल जाएगा, दीन की मुसीबत का नहीं। बस आप देखिए ना, कुछ भी हो गया, गाड़ी किसी जगह लग गई, एक्सीडेंट हो गया, $1,000-3,000 लगेगा, गाड़ी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर दीन का नुकसान हो जाता फिर क्या करते? अपना पूरा नुकसान हो जाता। बात वाज़े, दीन का नुकसान कभी भी बर्दाश्त नहीं होता, दुनिया का तो फिर भी हो जाता है। क्लास में आना छोड़ देते हैं, क्या ये नुकसान है? बहुत बड़ा नुकसान है। तो हमेशा याद रखें, जो मुसीबत आए उस पर शुक्र कीजिए कि ये दुनिया के मामले में आई। फिर एक और तीसरी चीज़ ये सोचिए कि अल्लाह ही ने सब्र की तौफीक दी है, और ये भी मुमकिन था कि मुझे वो तौफीक ही ना देता, फिर मैं सब्र कैसे करती, जजा फजा करती, नाराज़गी का इजहार करती और हर चीज़ का नुकसान उठाती। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा एक मौके पे कि मुझ पर जो मुसीबत भी आती है, सोचिए ज़रा, उमर पर आ सकती है तो मेरे आप पे क्यों नहीं आ सकती? कहते हैं कि मुझ पर जो मुसीबत भी आई, अल्लाह ने उसमें तीन नेमतें रखी हैं, गिन लीजिए। नंबर एक, मेरे दीन में मुसीबत नहीं आई, यानी उम्र का दीन नहीं कमज़ोर पड़ा। ये सबसे बड़ा नुकसान है कि आप अपना दीन कमज़ोर कर दें, आप नेकियों को छोड़ दें, नमाज़ों को छोड़ दें। अल्लाह ने आपको एक ऑप्शन दिया, आप वो कबूल ना कर पाएँ, आप हज कर सकते थे, आपने नहीं किया, ठीक है। फिर कहते हैं दूसरी नेमत ये कि इस मुसीबत से ज़्यादा बड़ी नहीं आई। और तीसरी बात है कि अल्लाह ने मुझे इस पर सब्र की तौफीक दी है। क्या कहते थे उमर? मेरे पर जो मुसीबत आती है उसमें तीन नेमतें भी साथ आती हैं। नंबर एक, ये मेरे दीन पे नहीं आई मुसीबत, दूसरी बात, इससे मुसीबत से बड़ी नहीं आई, और तीसरी बात है कि मुझे अल्लाह ने सब्र की तौफीक दी। दसवां अदब क्या है कि मुसीबत में अल्लाह ताला से कुशादगी की उम्मीद रखिए। इन्ना माल उसरी युसरा, तो याद रखिए कि उसर में युसर है। फिर उसके बाद एक और चीज़ रखिए कि गैर अल्लाह से कुशादगी की उम्मीद ना बांधे कि फ़लाँ मेरी दुख तकलीफ़ दूर करेगा, ये अल्लाह के साथ शिर्क होगा। और दूसरी बात है कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, सूरत यूसुफ 87 और हिजर 56। तो क्या पता चला फिर कि जब भी मुसीबत दुख तकलीफ़ आए तो मुसीबत देने वाले की तरफ और झुकें। उर्दू में कहते हैं कि माँ मारे और बच्चा मामा पुकारे। कभी देखे कभी माँ बड़े गुस्से में बच्चे को एक लगा भी दे ना, तो पास बैठी दादी फुफ्फो खाला प्यार से बच्चे को बुलाए ना, मेरी तरफ आओ, तो देखिए क्या करता है, वो माँ की टांगों में लिपकता है, वही पकड़ती है रोते बच्चे को, तो रोते बच्चे को सिर्फ माँ ही चुप कराती है। हंसता बच्चा सबका, रोता माँ का, रोते बच्चे बनकर माँ के तरह अल्लाह से चिपक जाइए। ये है असल में सब्र और दुख, और इसके बड़े दर्जे हैं, अभी इतना मौका नहीं है, लेकिन याद रखिए कि सब पे आएगी, आ सकती है, इसको भी नेकियों का जरिया बना लीजिए। और जब दुख तकलीफ आती है तो खुशियां भी आती हैं। और एक जुमला बोलती हूँ, अब अगला टॉपिक है खुशी के आदाब। हमें तकलीफें दुख और बीमारियां, ये तो आजमाइश लगती हैं, ये तो लगती हैं मुश्किल चीजें, लेकिन खुशी आजमाइश नहीं लगती। हालांकि अल्लाह ताला क्या कहते हैं, लीना ब्लुवाकुम अय्युकुम अहसनु अमला। खुशी और गम इम्तिहान के दो पर्चे हैं। गम के मौके पे सब्र आसान है, क्यों? फितरत के करीब होता है बंदा, वो जो फितरत सलीमा पे पैदा किया था ना बच्चे को, वो जाग जाती है फितरत। आज तक कभी किसी ने मैयत वाले घर में सेग्रीगेटेड माहौल का मुतालबा या उसके बारे में कुछ बातें नहीं की होंगी। वहाँ कोई मिक्स गैदरिंग की बात नहीं करता, वहाँ जाकर कोई ये नहीं कहता कि कुछ तो म्यूज़िक हो, लेकिन यही दो तीन लफ्ज़ जब खुशी आती है तो इम्तिहान नहीं बन जाते। तो खुशी का पर्चा मुश्किल है। बनी इसराइल की हिस्ट्री जब बयान हुई थी, और सूरह बकरा में दो तीन दफ़ा ये जुमला मैंने खुद बोला कई जगह क्लास में, कि बनी इसराइल से दो दफ़ा सब्र का मुतालबा था। एक वो जब वो फिरौन के ग़ुलाम थे और वो उनसे बेगार लेता था, और उसमें वो कामयाब हो गए, तभी तो अल्लाह ने मूसा जैसा मसीहा दिया। इसको कहते हैं इज़तरारी पेशेंस, इज़तरारी सब्र, पेशेंस विथ फोर्स, करना ही था। लेकिन दूसरा सब्र का मुतालबा था जब फिरौन डूब गया और वादी ती में जाकर वहां जाकर कुछ काम करने थे, इसमें इख्तियार था। ये खुशी का सब्र था, फतह का जश्न का मौका नहीं था, उनको उस वक्त अल्लाह के बनना था, इसमें वो फेल हो गए। और मन व सलवा के जवाब में क्या कहने लगे, लन नसबिर आला तआमिन वाहिद। तो लिख लीजिए, दुख का सबर हमारे ऊपर जो आता है ना, ये इस्तरारी होता है, इसमें तो करना ही करना है, लेकिन खुशी का सबर इख्तियारी, इख्तियारी मीन बाय चॉइस, वो बाय चॉइस नहीं है, ये विद चॉइस है। तो आइए देखते हैं कि खुशियों के भी कुछ आदाब हैं। पहली बात है कि खुशी अल्लाह का इनाम है और इसका इजहार फितरी अमर है। ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं कि इंसान पर अल्लाह की रहमत होती है, मसलन इल्म की दौलत मिली, माल मिला, शादी हुई, त्यौहार है, ईद का मौका, तो इस्लाम खुशी के इजहार को पसंद करता है। लेकिन तवाज़ुन इख्तियार कीजिए, बैलेंस्ड रवैया। क्या आदाब है? नंबर एक, खुशी के मौके पर आपे से बाहर नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने जिन लोगों पर इनामात किए, इनके दो तरह के रवैये थे, या तो इन नेमतों और इनामात को अपना ज़ाती टैलेंट, अपनी पर्सनल ग्लोरी समझते हैं और इतराने लगते हैं, या फिर उस पर क्या कहते हैं कि जो दिया जो किया जो मिला अल्लाह ने दिया। आपका मेरा पूरा टेस्ट होता है, हम किसी कामयाबी पर अपने कंधे थपथपाते हैं कि दूसरों के। चलिए मिसाल ले लीजिए, सूरत कसर 76-78, कारून की मिसाल, सबने पढ़ा हुआ वाक़या। अल्लाह ताला कहते हैं कारून मूसा की कौम में से था, फिर वो उनमें से सरकश हो गया यानी मुनाफिक था, हमने उसको इतने खजाने दिए कि उसकी चाबियां एक ताकतवर जमात को थका देती थी। जब इसकी कौम ने उसे कहा कि इतराओ नहीं क्योंकि अल्लाह को पसंद नहीं इतराने वाले, कहने लगा जो कुछ मुझे मिला वो तो मेरे इल्म पे मिला। उसको कहा गया था तुम्हें अल्लाह ने जो दिया है उसमें से दुनिया का हिस्सा भी ना भूलो, वला तंसा नसीब अकफ दुनिया या मिनत दुनिया। तो क्या पता चला? उसने कहा कि नमा ऊती तुहू अला इल्मी, मैं तो अपने स्किल्स पे मिला। आप इसको अमल से समझिए। बच्चे पास हो गए, फर्स्ट आ गया आपका बच्चा, डॉक्टर बन गया। कहते हैं हाँ मेहनत भी तो इतनी कराई है हमने, इतने अच्छे स्कूलों में भी तो भेजे। लोग कहते हैं आपके बच्चे बड़े अच्छे हैं। अच्छा, अच्छे बच्चे हमारी नज़र में वो हैं कि जो कुछ बन गए हैं, ये नहीं पता कि उनको नमाज भी आती है पूरी कि नहीं और पढ़ते भी हैं कि नहीं। लेकिन कामयाबियों का मेयार आज बदला हुआ है, फी जमाना जो भी उसको ही ले लीजिए। तो उस वक्त फिर हम अपनी तारीफें करते हैं। कितने ऐसे माँ बाप है बेचारे, कितना लगाते हैं बच्चों पे, फिर भी बच्चे ठीक नहीं होते, राइट? तो क्या पता चला कि जब कोई नेमत मिले तो एक क्या है कि आपके मैं आई एम, मैंने किया सब कुछ, दूसरा रवैया है अल्लाह की तरफ। ये है मिसाल अंबिया कराम की। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि अल्लाह के नबी के पास जब कोई खुशी की खबर आती या आपको इसमें से बिशारत दी जाती तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करते और सजदे में गिर जाते। अबू दाऊद 2774 और इब्ने माजा 1394। पीछे पढ़ चुके हैं ना सजदे शुक्र। तो शुक्र कौन करेगा जो उसको अल्लाह पर समझेगा। तो फिर दूसरा अदब क्या हुआ कि खुशी पर अल्लाह के एहसान को पहचानना और शुक्र अदा करना चाहिए। तीसरा अमल वही जो ऊपर बात हुई कि सजदा शुक्र अदा कीजिए। काब बिन मालिक की तौबा कबूल हुई तो सजदे में गिर गए। मुस्लिम 2769। चौथा अदब खुशी का, खाना खिला दीजिए। नबी सल्लम जब सफ़र से वापस आते तो शुक्र अदा करने के लिए लोगों को ऊँट या गाय ज़िबा करके खाना खिलाते थे। अबू दाऊद की रिवायत है 3747। खुशी का मौका ख़ास तौर पे फिर जिसमें हम शादी ब्याह को लेते हैं। पांचवा इसमें एक काम किया जा सकता है और वो है दफ़ बजाना। हज़रत आयशा से रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि निकाह का ऐलान करो और अक़्दे निकाह मस्जिदों में बांधो और दफ़ बजाओ। बहुत सारे हवाले हैं, इसमें से एक लोड कर लीजिए, सिर्फ बुखारी जिल्द 6 और 6137। अब इसके ऊपर दफ़ बजाने की दलील पे हम इससे ढोलक पार्टियां निकाल सकते हैं ना। इस पे एक लड़के लड़कियों का अच्छा सा हल्ला गुल्ला महफिल, मेहंदी उपटन, क्योंकि दफ़ बजा सकते हैं। आप कहते हैं कि दफ़ क्या होता है? एक हाथ से वो बर्तन जिसको छन छन करते हैं और उस पर भी घुंघरू नहीं थे होते, प्लेट कैसे बजाती हैं? आज भी अरब औरतें से पकड़ के मुंह से कुछ आवाज़ें निकालती हैं। बस लोग कहते हैं नहीं वो अरब कल्चर था ना, अब हम अमेरिकन कल्चर में, हम नॉर्वेजियन कल्चर में, अब हम उनके उनके। देखिए खुशी करिए लेकिन खुशी देने वाले को नाराज़ नहीं करना और दूसरों को तंग नहीं करना। फिर इसी तरह आप देखिए कि इस्लामी त्यौहार मनाने चाहिए। गैर मुस्लिम कौमें जब त्यौहार मनाती हैं तो मस्त हो जाती हैं। आज भी ये फिगर मौजूद है, जाके गूगल पे देख लीजिए, सबसे ज़्यादा शराब क्रिसमस के दिन पी जाती है, सबसे ज़्यादा बुराइयाँ बदकारियाँ क्रिसमस के दिन होती। क्यों? खुश होते हैं। ड्रंक लोग एक्सीडेंट क्यों होते हैं इतने? इसलिए होते हैं ना। इस्लाम आपको मुझे ये नहीं सिखाता। तो इस्लाम के त्यौहार जो हैं हम सब जानते हैं, दोनों ईदें भी हैं, हर जुम्मा खुशी का दिन है, तो इसमें अच्छे तरीके से मनाइए। फिर ईद का दिन आए, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहने, खुशबू लगाएं, नमाज अदा करें। अल्लाह के नबी का ये तरीका है खुश होने का, मुस्लिम 609 पार्ट 2। लेकिन इसमें फिर औरतों के लिए कुछ हदें हैं। आप बाहर दूसरों को तो नहीं परेशान कर सकते बन ठन के, सच संवर के निकल के, यानी हर वो चीज़ जिससे दूसरों को डिस्टर्बेंस ना हो वो काम कीजिए। फिर इसी तरह खुशी के मौके पर जाहिलियत के तरीकों से इज्तनाब कीजिए। इस्लाम क्या चाहता है? खुशी के मौके पर भी बंदे का दिल अल्लाह से ना गाफिल हो। ऐसे काम ना जिसे इंसानी कदरें पामाल हों। और सूरत लुकमान आयत 6 अगर आप देखें तो अल्लाह ताला चाहता है कि जब तुम्हें कोई खुशी मिलती है तो उस खुशी को तुम संभाल के भी रखो। फिर उसके बाद अगली चीज़ जो आप खुशी के मौके पर, और वो क्या है कि खुशी देने वाले को इस बात का यकीन दिलाइए कि आप इस खुशी के काबिल थे। देखिए अल्लाह ताला बंदे को कभी कभी खुशियाँ इसलिए भी दे देता है कि ज़रा मैं देखूँ इसका बर्तन कितना बड़ा है। बाज़ दफ़ा हम अपनी खुशियों के मौके पे ये साबित कर देते हैं कि शायद ये आखिरी खुशी थी जो हमें मिलनी चाहिए थी, इसके बाद अब हम कुछ और खुशी नहीं लेंगे। तो अल्लाह से ये दुआ करें कि हमारी खुशियों पे जिस तरह हम ये चाहते हैं ना कि सब खुश रहें, घर के नौकर भी खुश जाएं, यही सोचते हैं ना, फुफियाँ मासियाँ खाला भी खुश जाएं। अल्लाह नाराज़, अल्लाह का नबी नाराज़, फरिश्ते नाराज़। तो एक जुमला लिख लीजिए कि खुशियों के मौके पे फरिश्तों को अपने से दूर नहीं कर देना चाहिए। उन्हीं से तो रहमत आनी थी, उन्हीं से तो बरकतें उतरनी थी। अल्लाह ताला आपकी मेरी इस्लाह फरमाए। कोई सवाल है आपके जहन में? चूँकि टॉपिक खुशी का है और खुशी के नाम से बहुत कुछ होता है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं, कोई चीज़ और पूछना चाहते हैं?